शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राजयोग के प्रातःकालीन दूसरे सत्र में आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 86 वर्षों से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है। प्रारंभ से ही सहज ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग हमारी सेवा के मुख्य दो साधन रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत वो मूल सनातन सत्यों का ज्ञान दिया जाता है, जिन यूनिवर्सल ट्रुथ्स के आधार पर हमारा जीवन चलता है और संसार का ये खेल चलता है। जैसे जैसे आप ईश्वरीय ज्ञान सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, आप सहज योगी बन सकेंगे। राजयोग वो विधि है जिसमें हम अपने आप को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ते हैं, जिस योग अभ्यास से हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बना सकते। योग शब्द का सरल अर्थ है मिलन। जैसे वियोग माना अलग हो जाना, बिछड़ जाना, सेपरेशन, योग माना मिलन मनाना, संपर्क स्थापित होना, संबंध जोड़ना। योग शब्द का आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसलिए योग अभ्यास आरंभ करने से पूर्व तीन बातों का ज्ञान होना जरूरी है। योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन है, जो कल मॉर्निंग फर्स्ट सेशन में आप सभी ने समझा। अब आप सबको स्पष्ट होगा कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर केवल एक साधन है जिससे हम कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। इस शरीर रूपी साधन को हमें स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, परंतु शरीर के अभिमान में नहीं आना है। हम अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप को भूल गए, खुद को देह समझने लगे, देह भान में आने लगे, बॉडी कॉन्शियस बन गए। ये देह अभिमान ही, ये बॉडी कॉन्शियसनेस ही मन की चंचलता का मूल कारण है। जैसे ही खुद को देह समझते हैं, हम देह संबंधों से, दैहिक प्रवृत्तियों से, भौतिक पदार्थों से, दैहिक दुनिया से अटैच होने लगते हैं। इसलिए फिर से सोल कॉन्शियस बनने के लिए हमें आत्म चिंतन का अभ्यास करना है। हमें पर चिंतन, शरीर चिंतन, संसार चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन का अभ्यास हो गया है। अगर इसको बदलना हम चाहते हैं, हमें अपने मन बुद्धि स्वचिंतन, आत्मचिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, परमात्मा चिंतन में रहना है। तो आज के द्वितीय सत्र में हम उस परम चैतन्य शक्ति परमात्मा के बारे में समझेंगे कि आखिर वो पिता परमात्मा कौन है। हम भक्ति में भगवान को मानते हैं, यथार्थ रूप से जानते नहीं। इसलिए हरेक अपनी अपनी भावना अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने अपने इष्ट को याद करते हैं। हमें स्पष्ट ही नहीं है परमात्मा कौन है। जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, प्रभु, परमेश्वर कहकर याद करते हैं, इतना हम जानते हैं और कहते भी हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहते हैं, सबका मालिक एक कहा जाता है। और ये विवेक की बात भी है कि परम सुप्रीम एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, अनेक नहीं हो सकते। सुप्रीम, फाइनल, ऑलमाइटी अथॉरिटी एक ही हो सकता है। जब परमात्मा एक है तो उनका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मते हैं। इसलिए एक से बुद्धि योग नहीं लग रहा है क्योंकि मान्यताएं अनेक हो गई। जिसको श्री राम में भगवान भावना है वो कहते हैं श्री राम ही भगवान है। श्री कृष्ण से जिसको प्यार है वो श्री कृष्ण को ही परमात्मा मानते हैं। कोई प्रकृति को परमात्मा समझते हैं कि चारों ओर जो प्रकृति का अपार सौंदर्य फैला हुआ है ये नेचर ही परमात्मा है। कुदरत को ही भगवान समझ लिया है। कोई आत्मा को ही परमात्मा समझ रहे इसलिए अपने आप को ही भगवान कहलाते हैं, अपने आप की पूजा करवाते हैं। कोई सब में भगवान है ऐसी भावना से चल रहे हैं। तेरे में, मेरे में, कण कण में, गधे में, घोड़े में, सांप में, सुअर में, सब में भगवान है ऐसी भावना रखते हैं। तो एक परमात्मा के बारे में आज अनेक मतें हैं, अनेक मान्यताएं हैं। ये अनेक मतें ही सिद्ध करती हैं कि परमात्मा का सत्य परिचय हम नहीं जानते हैं। परमात्मा का सत्य परिचय किसको कह सकते हैं? पहले हम उस डेफिनेशन को समझे। परमात्मा के सत्य परिचय की सत्य परिभाषा स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम सभी आत्माओं को बताई है। आज वो परिभाषा मैं आपके सामने रखूंगी। मैं 5 बातें आपके सामने रखूंगी। पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सभी को माने। कुछ माने दूसरे न माने उसको परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति समाज के पिता नहीं। परमात्मा समग्र विश्व के पिता है, सर्व आत्माओं के परम पिता है। इसलिए परमात्मा का सत्य परिचय वो ही हो सकता है जिसको मुख्यतः सभी धर्म मान्य करे। सारे विश्व की, सभी धर्म की बात छोड़िए, यहां आप जितने बैठे हैं, अगर मैं आप सबसे पूछूं परमात्मा कौन है, क्या एक जवाब आएगा? आएगा नहीं। हर एक अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार बताएंगे। इसलिए पहली बात, परमात्मा का सही परिचय उसे कहेंगे जिसे विश्व के मुख्यतः सभी धर्म मान्य करते हो। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो। हम सब जानते हैं जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। हम कहते हैं ना, जिसने शरीर धारण किया है वो शरीर छोड़ेंगे भी जरूर, जो आया है सो जाएगा। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। जो जन्म लेते हैं वे प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। ये शरीर क्या है? क्या है शरीर? क्या है? कल आप समझ चुके हैं, पांच तत्वों से बना है। प्रकृति माना क्या है? पांच तत्व है। तो हम प्रकृति के बंधन में बंधने लगते हैं, स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं देह संबंधों में बंधते जाते हैं। बच्चा पैदा होते ही परिवार के सभ्य बन जाता है, वो किसी का बेटा है, भाई है, पोता है, संबंधों में वो बंधने लगता है। परमात्मा उसे कह सकते हैं जो देह संबंधों से मुक्त है। जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधने लगते हैं। आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकता है। हम कर्म बंधन में बंधने लगते हैं क्योंकि अच्छा बुरा साधारण जो कुछ हम करते हैं हम उस कर्म के फल से बंधने लगते हैं। हम कह सकते हैं परमात्मा उसको कहेंगे जो संबंधों के बंधन से कर्म बंधन से सुख दुख के बंधन से प्रकृति के बंधन से मुक्त है। इसलिए परमात्मा को सदा मुक्त कहते हैं, सदा स्वतंत्र कहते हैं। और हम मनुष्य आत्माएं भी सदा परमात्मा से मुक्ति मांगते रहते हैं, मांगते हैं ना, हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहां सुख चैन पावे। हम जन्म मरण के फेरे से हमें छुड़ाओ। हम परमात्मा से सदा मुक्ति मांगते हैं, अंडरस्टूड है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम परमात्मा से सदा मुक्ति मांगते हैं, अंडरस्टूड है। जो सदा मुक्त मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्त कर सकेगा। इसलिए परमात्मा केवल उसे ही कह सकते हैं जो सभी बंधनों से, सभी लेपों से, सभी प्रभावों से मुक्त है। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च हैं, उनके कोई माता पिता शिक्षक गुरु शेठ स्वामी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर और कोई आत्मा ही नहीं, वे ही परम हैं। इसलिए हम कहते हैं सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिसेप्टर, सतगुरु कहते पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, नाथों का नाथ उसे कहा जाता। इसलिए चौथी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो अपनी स्थिति, अपने गुण, अपने परम कर्तव्यों में सदा स्थित है, जिनके गुण बदलते रहते हैं, कर्म बदलते रहते हैं, स्थिति बदलती रहती है, उसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। जो सदा परम है, ऊंचेते उच्च है, अपरिवर्तनशील, एक रस, ऐसे नहीं आज प्यार का सागर है कल क्रोध का सागर हो जाएगा, आज दाता है कल मंगता बन जाएगा, नहीं। परमात्मा की महिमा में इसलिए हम कहते हैं सदा दाता, सदा शिव, सदा मुक्त, सदा पावन, और कोई जन्म मरण में आने वाले सदा एक रस, परम, सर्वोच्च, अपरिवर्तनशील नहीं रह सकते। आप जानते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा का नियम है परिवर्तन। हम कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सदा अपनी परम स्थिति में, परम गुणों में, परम कर्तव्यों में स्थित है। हर एक अपने आप को ही देखे, हमारे अपने गुण, हमारी अपनी आत्मस्थिति, हमारे कर्तव्य कितने बदलते रहते, हर दिन बदलते रहते, हर घड़ी हम कहते हैं अभी मेरा मूड ठीक नहीं। और चौथी बात, पांचवी बात, परमात्मा उसको कह सकते हैं जो सर्वज्ञाता है, सदा दाता है। सर्वज्ञता है, नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को, आलोक परलोक को जो जानता है। इसलिए परमात्मा के लिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है। मनुष्यात्माओं के लिए हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ है। हम लिमिटेड नॉलेज रखते हैं, हम जानते हैं और भूल जाते हैं। शरीर छूटा इस जन्म में, जो कुछ जाना वो भी भूल जाते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, इसलिए केवल परमात्मा ही सर्व सनातन सत्यों का ज्ञान वो ही देते हैं। यही कारण है भक्ति में हजारों संतों ऋषि मुनियों हो गए, चिंतक लेखक वैज्ञानिक हो गए, अनेक ग्रंथ शास्त्र किताबें हो गई, ऑलरेडी रिसर्च चलती ही रहती है, फिर भी हम परमात्मा को क्यों कहते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सतगमय। जरूर परमात्मा आकर ही मूल सत्यों का ज्ञान देते हैं, और कोई नहीं दे पाते हैं। इसलिए अनेक मतें हो गई, अनेक धर्म संप्रदाय मठ पंथ हो गए, परमात्मा के बारे में अनेक परिचय हो गए। परमात्मा के सत्य परिचय की, सत्य परिभाषा की ये पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से सोचिए, किसको परमात्मा कह सकते, किसको परमात्मा कह सकते हैं। ये पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप बताइए, क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी आत्माओं को परमात्मा कह सकते हैं, कह सकते हैं, बताइए। हाँ, विवेक से बताइए, नहीं कह सकते। तो सबसे पहली बात अपनी बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए, जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई भी देहधारी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। हम मनुष्यात्माएं परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं बन सकते हैं। परमात्मा परमात्मा है, हम आत्माएं आत्माएं हैं। एक बेटा अपने पिता जैसा रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, विद्वान, धनवान, बलवान, पुत्रवान बन सकता है, परंतु फिर भी पिता पिता है और रचयिता रचयिता है, पुत्र पुत्र है, रचना रचना है। हम पिता जैसे बन सकते हैं, पिता ही नहीं बन जाते। इसलिए कोई भी शरीरधारी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात, जो भी साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, उनको हम महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सही परिचय न जानने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही भगवान समझने लगते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, परमात्मा रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। वो तो मनुष्य गुरु भी करते हैं। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्माएं नहीं करते हैं। और हम सब जानते हैं कि योग साधना करके ही महात्मा बने हैं, परमात्मा की याद से ही तो महान आत्मा बने हैं। इसलिए हम इन्हें महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, इतिहास आप सभी जानते हैं, कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने इस सृष्टि रंगमंच पर आकर अपने अपने धर्मों की स्थापना का कार्य किया। कौन कौन धर्म स्थापक हुए बताइए। हाँ देखो, चाहे इब्राहिम है जिन्होंने इस्लाम धर्म, जिनको इस्लाम धर्म के ग्रैंडफादर कहते हैं, मोहम्मद पैगंबर हैं, गौतम बुद्ध हैं, यीशु ख्रिस्त हैं, महावीर स्वामी हैं, गुरु नानक जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, ये जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, वे धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। इसलिए इन धर्म स्थापकों ने स्पष्ट ही कहा है, हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम उस खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है, ये उनके फॉलोवर्स होते हैं जो समय बीतने के बाद अपने अपने धर्म स्थापक में ही सीमित हो जाते हैं, उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। चौथी बात, बहुत विवेक से और निष्पक्ष भाव से समझनी है। हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं को पूजते हैं, चाहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, श्री राधे श्री कृष्ण हैं, श्री राम श्री सीता हैं, श्री गणेश हनुमान महाकाली हैं, श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती हैं, जिन भी देवी देवताओं को हिंदू भाई बहने पूजते हैं, वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। देवी देवताएं अनेक है, परमात्मा तो एक ही है। और इन देवी देवताओं को सभी धर्म संप्रदाय वाले नहीं मानते। मानते हैं? नहीं मानते हैं। और धर्मों की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय भी सभी देवी देवताओं को मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते हैं। आप यूपी बिहार साइड जाइए, राम के चुस्त भक्त कृष्ण को नहीं मानते, न धूप सुंघते हैं न प्रसाद लेते। जब ये देवी देवताएं हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों को भी नहीं मान्य हैं, हम विश्व के सर्वधर्म की आत्माओं के परमपिता परमात्मा उन्हें कैसे कह सकते। देवी देवताओं के जन्म की, जीवन की, कईयों के मृत्यु की पूरी कथाएं हम सुनाते हैं, गाथाएं हम गाते हैं। इन देवी देवताओं के माता पिता बंधु सखा गुरु शिक्षक पत्नी बच्चे संबंधों में बंधे हुए उनको बताते हैं। हम इन देवी देवताओं को श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताते हैं कि वे आए ही सृष्टि पर, अवतरित हुए, अवतार लिया ही इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, राक्षसों का संहार करने, दुखियों को सुखी बना, नरक को स्वर्ग बना। तो जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं और उन श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप उनको दैवी राजाई करते हुए बताते हैं, स्वर्गीय अपार सुखों को भोगते हुए दिखाते। देखो, हर देवी देवताओं के मस्तक पर रत्न जड़ित ताज दिखाया जाता है जो सत्ता का प्रतीक है। उनको सिंहासन पर बैठे हुए दिखाते हैं जो राज सत्ता का प्रतीक है। आज तक भी मंदिरों में हर देवी देवताओं को कितने ना अमूल्य हीरे मोती सोने चांदी के वस्त्र अलंकार आभूषणों से सजाया जाता है। ये वैभव प्रतीक है कि स्वर्गीय सुख उन्होंने भोगे थे। तो भाइयों और बहनों, जो भोगता है उसे परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा में कौन से विशेषणों का प्रयोग किया जाता है? अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, निराकार, निरंजन उसको कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है, जिनको स्वयंभू बताया गया है? ऐसा कौन सा स्वरूप है? कोई स्वरूप है? कोई स्वरूप जो सभी धर्मों को मान्य है? तो मुंझने की बात नहीं है। परमात्मा को जानना सबसे आसान है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम, संधि विच्छेद करिए, परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, क्योंकि वो भी आत्मा है। सिर्फ वे अपने गुणों से, कर्तव्यों से, अपनी स्थिति से परम सुप्रीम है। वही हम सब ने उनकी डेफिनेशन में देखा ना, कि वो अपने गुणों में, कर्तव्यों में, स्थिति में ऊंचे ते उच्च है, इसलिए परमात्मा के। देखो, हम किसी को महात्मा कहते हैं, अपने आप को साधारण मनुष्यात्मा कहते हैं। तो महात्मा कहने का अर्थ ये तो नहीं है ना कि वे रूप से महान है। हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, और महात्मा माना वो इतनी मोटी आत्मा है, ऐसा अर्थ तो नहीं है ना। जो अपने गुण और कर्मों से महान है उसको महात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से पतित है उसको पापात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से दिव्य है उसको देवात्मा कहते हैं। पर है तो हरेक आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है ना। तो परमात्मा भी रूप से ज्योति बिंदु स्वरूप है, अपने गुण कर्मों स्थिति से परम सुप्रीम ऊंचे ते उच्च है। इसलिए परमात्मा रूप से परम नहीं है, अपने गुणों से ऊंचे ते उच्च है। तो आज अपनी बुद्धि में एक और चित्र मैं आपको बताती हूं। देखो, परमात्मा का दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के मुख्यतः सभी धर्मों को मान्य है। चित्र में बताया है हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। जानते हो ना सभी भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। परमात्मा इतने बड़े लिंगाकार नहीं है, ये भक्ति में ज्योति बिंदु परमात्मा जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते, पूजा कैसे करे। इसलिए भक्ति में ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बनाए गए। प्रथम 12 ज्योतिर्लिंग प्राचीन प्रसिद्ध हुए। चित्र में बताया है अमरनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, नेपाल में पशुपतिनाथ, रामेश्वर में, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। रामेश्वर में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए बताया गया है। आप वृंदावन गोपेश्वर में जाएंगे, वहां श्री कृष्ण को भी शिव के आगे नमन करते हुए बताया है। एक और विवेक की बात आपको बताते हैं। इवन शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यानस्थ बताते हैं। देखा है ऐसा चित्र? देखा है? आगे शिवलिंग है और शंकर जी को तपस्या करते हुए बताते हैं। सोचने की बात है, शंकर जी स्वयं परमात्मा होते तो वो किसकी आराधना में बैठे, किसके ध्यान में बैठे? परमात्मा को तो कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई होता ही नहीं। शंकर जी तपस्या करते हैं, उनको कहते ही है जोगी, सिद्ध है उनके ऊपर कोई परम चैतन्य शक्ति है जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। यही कारण है आप सब ने भक्ति में देखा है शिवलिंग पर त्रिपुंड करते हैं, तीन रेखा और ऊपर बिंदु किया जाता है। देखा है? ये क्या सिद्ध करता है? परम पिता परमात्मा त्रिदेव रचयिता ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो शिवलिंग शिवालय हर शहर गांव गली गली जंगलों में भी शिवालय पाए जाते हैं। अब आप देखिए मुस्लिम भाई बहने, वे स्पष्ट मानते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह नूर है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। हिंदी भाषा में हम बोलते हैं, वही बात अरबी भाषा में वे कहते हैं अल्लाह नूर है. नूर मीन्स, नूर का अर्थ भी क्या है, नूर माना प्रकाश, ज्योति. वे स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूरे इलाही है. परमात्मा ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं है. इलाही मीन्स अभौतिक, अलौकिक, दिव्य प्रकाश बिंदु है. जापान के बौद्धिस्ट भाई बहने, विशेषकर जो महायान पंथी बौद्धिस्ट हैं, वो लोग शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने रखते हैं और ध्यान उससे लगाते हैं. उस प्रतीक को चिनकान शेकी उनकी जैपनीज लैंग्वेज में कहते हैं, जिसका अर्थ है शांति दाता. इसलिए देखिए, गौतम बुद्ध जी को देखिए, गौतम महावीर स्वामी जी को देखिए, ध्यान अवस्था में बताते हैं वो किसका ध्यान करते हैं, किससे बुद्धत्व मिला. वो है परम चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा, जिससे अवेयरनेस आई, जागृति मिली. जीसस क्राइस्ट ने स्पष्ट कहा है, गॉड इज लाइट. आई एम ए सन ऑफ गॉड. उन्होंने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है. उन्होंने स्पष्ट इशारा किया है, गॉड इज लाइट. इसलिए क्रिश्चियन भाई बहने चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं और फिर प्रेयर करते हैं. गुरु नानक जी ने एक निराकार की ही महिमा की है, एक ओमकार, निराकार, सतनाम, निर्भय, निर्वैर, अयोनिज उसे कहते हैं. तो सिख भाई बहने एक निराकार की ही महिमा गाते हैं. तो देखिए, विश्व के जितने भी मुख्यतः धर्म है, इनके जो मूल धर्म स्थापक है, इन सब का मूल एक ही इशारा है कि परमात्मा एक है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है. उनको हमारे जैसा शारीरिक प्राकृतिक आकार नहीं है, इसलिए हमारी तुलना में परमात्मा को निराकार कहते हैं. उनका अपना दिव्य आकार ज्योति बिंदु स्वरूप है. उनका चित्र में देखिए, ये जो किरणों के रूप में परमात्मा के गुणों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो भक्ति में हम भगवान की महिमा में गाते हैं. तो अब हम अपनी बुद्धि में ये स्पष्ट कर लें कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, हम सर्व आत्माओं के अविनाशी परम पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसे संज्ञावाचक नाम नहीं है। हमारे नाम शरीर से है ना। अभी मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरा गीता नाम भी खत्म हो जाएगा ना? मैं नया शरीर लूंगी, मुझे नया नाम मिलेगा ना। हमारे नाम शरीर से, परमात्मा का नाम गुणों से है, कर्तव्यों से है। इसलिए उनके अनेक गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। सोमनाथ, अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, भोलानाथ, हम उनको ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वेश्वर, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर कहते हैं। ये भक्ति में उनके अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है, पर है तो सभी शिवालय न। तो परमात्मा का मूल असली स्वकथित नाम है शिव। शिव मीन्स कल्याणकारी। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा के बारे में सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा शिव कल्याणकारी है, सत्य अविनाशी है, सुंदर सदा पावन है। उनके अनेक गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम भक्ति में है, पर हमें ये अनेक नामों को याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनके मूल नाम को याद करें, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से यहां हम शिव बाबा कहते हैं। बाबा का अर्थ है बाबा माना, बाबा माना पिता। पिता को बाबा कहते हैं ना, बूढ़े बाबा ऐसे कहते हैं ना, पिता को बाबा कहते हैं। यहां कोई साधु बाबा की बात नहीं है, परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। ये हमारी ओरिजिनल रियल आइडेंटिटी है। हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, हम भगवान के बच्चे हैं। है सबको खुशी? देखो कोई बोलते नहीं। आज दुनिया में कोई उद्योगपति, मिनिस्टर, ऑफिसर के बेटे को कितना नशा होता है, हाँ? बोलते रहते हैं ना, पता है मैं किसका बेटा हूं, हाँ? हमें नशा है, हम भगवान के बच्चे, हाँ? देखो नहीं है। धीरे धीरे बोलते हैं, क्योंकि खुशी नहीं है ना। हम अपने आप को भूल गए, पिता परमात्मा को भूल गए, उनसे हमारे संबंध नहीं रहे, प्राप्ति नहीं रही, इसलिए खुशी और नशा भी नहीं है। कोई महात्माओं से योग लगा रहा है, कोई धर्मात्माओं से योग लगा रहा है, कोई देवात्माओं से योग लगा रहा है। हम परमात्मा को जानते ही नहीं हैं, इसलिए हमारा उनसे योग ही नहीं रहा। तब तो हम पतित दुखी अशांत बन गए। परमात्मा के गुणों की महिमा भक्ति में कितनी करते हैं, हम गाते हैं ना कि पूरी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए, पूरे समुद्र के पानी की स्याही बना दी जाए, हर वृक्ष की डाली की कलम बना दी जाए और स्वयं सरस्वती निरंतर लिखती रहे, तो भी हे ईश्वर तेरी महिमा अपरंपार। हे ईश तव गुणानाम पारम न याति। संस्कृत का ये श्लोक बोलते रहते हैं ना, तेरी महिमा अपरंपार। स्वयं परमात्मा आकर अपने गुणों का अंत बताते हैं कि परमात्मा सर्व ईश्वरीय गुणों का सागर है। हम गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है, शांति का सागर, सुख कर्ता दुख हर्ता, पतित पावन है, सदा पावन पवित्रता के सागर, सर्व को पावन बनाने वाले पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता सर्व शक्तिमान है। कितनी महिमा भक्ति में हम करते हैं। हम कह सकते हैं ऐसे संपूर्ण सत्य ज्ञान सर्वगुण सर्व आध्यात्मिक शक्तियों के सागर परमात्मा के हम बच्चे हैं। ऐसे परमात्मा के बच्चे कैसे होने चाहिए? शेर का बच्चा क्या होता है? शेर होता है ना। परमात्मा के हम बच्चे कैसे होने चाहिए? परमात्मा जैसे होने चाहिए ना। परंतु है नहीं है। आज हम पतित भ्रष्ट दुखी अशांत बन गए। इसलिए आरती में भजनों में क्या गाते हैं? मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। रोज गाते हो कि नहीं आरती में? हाँ गाते हैं ना। अब रियलाइज करना है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम पतित भ्रष्ट बन गए हैं, अंडरस्टूड है, हमारा भगवान से प्रैक्टिकल कोई संबंध नहीं रहा है। इसलिए मुरखल कामी, मैं पापी नीच कपटी हूं, भगवान के आगे स्वीकार करते रहते हैं। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। क्यों भाई? भगवान के हम बच्चे, हम ऐसे पतित भ्रष्ट क्यों बन गए? क्योंकि हम उनको भूल गए, उनके जैसे गुण नहीं रहे, इसलिए खुशी भी नहीं है, प्राप्ति भी नहीं। भगवान से मांगते रहते हैं, हमें मांगना नहीं है। पिता दाता है और बच्चे क्या बन गए? मंगता बन गए। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? हमारा भगवान से प्रैक्टिकल कोई रिलेशन नहीं रहा है, हम भगवान के ज्ञान गुण को फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर, अखुट भंडार, सदा दाता परमात्मा के हम बच्चे हैं। अब हमें उनसे योग लगाना है, संबंध जोड़ना है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। परमात्मा कौन सा कार्य करते हैं? वे हमें पति से पावन बनाते हैं। चित्र में बताया है, जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या के वश हो जाता है, पतित भ्रष्ट बन जाता है, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। चित्र में देखिए ऊपर, आज हम पतित असुर भ्रष्ट बन गए। बहनों और भाइयों, असुर कोई अलग योनि के भयानक प्राणी नहीं है। बड़ी बड़ी सिंग वाले, बड़े लाल लाल आंख वाले, दांत वाले कोई अलग असुर नहीं है। आज हम मनुष्यात्माए ही पतित भ्रष्ट असुर बन गए। खुद को महसूस करना है। जब हम क्रोध करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, एक दो के साथ वैर द्वेष दुश्मनी में आ जाते हैं, उस समय अपना चेहरा देखा है कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? हाँ, असुर जैसा ही तो दिखता है। हम ही असुर बन गए हैं कलयुग के अंत समय। परमात्मा आकर हमें पवित्र योगी बनाते हैं। जो परमात्मा की आज्ञा पर कलयुग अंत समय पवित्र योगी बनते हैं, वे आने वाले सतयुगी देवता बनते हैं। परमात्मा संसार को स्वर्ग बनाते विश्व परिवर्तन, विश्व पिता परमात्मा ही कर सकते। इसलिए देखिए, अनेक धर्मात्माएं, अनेक देवात्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं हो गए, फिर भी घोर कलयुग आ गए। दुनिया और पतित भ्रष्ट बन गई। ये समय इसलिए परमात्मा खुद आते हैं, हमें पावन बनाते हैं। ऐसा कार्य करने के लिए परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं? कब आते हैं? कौन सा श्लोक जानते हो सभी? भक्ति वाले भी सब जानते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हर एक भारतवासी जानते हैं जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, अति धर्म ग्लानी कब होती है? जब जब माना कब? एग्जैक्टली बताओ, अति धर्म ग्लानी कब होती है? किस युग में होती है? कलयुग अंत, न कि सतयुग, न कि त्रेता युग, न कि द्वापर युग। कलयुग अंत अति धर्म ग्लानी का समय है, इसलिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। भाइयों और बहनों, चित्र में बताया है, एक तरफ कलयुगी नर्क, दूसरी तरफ सतयुगी स्वर्ग बताया। कलयुग अंत अति धर्म ग्लानी का समय है। आप सबको यहां बुलाकर यही परमात्मा का दिव्य संदेश हमें देना है कि वर्तमान समय ही कलयुग अंत अति धर्म ग्लानी का समय है। देख रहे हो ना, चारों ओर अति ग्लानी हो रही है, होगी नहीं, हो रही है। कितने पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार चारों ओर चल रहा है। हर मानव मन में विकार आ गए हैं, घर घर में दुशासन दुर्योधन है। कोई संबंध में आज बहनों की सलामती नहीं, सगा बाप पापाचार करता है, बलात्कार करता है। यही घोर कलियुग है, अति धर्म ग्लानी का समय। तब कलियुग अंत सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में शिव बाबा ब्रह्मा तन में दिव्य अवतरित होते हैं और ब्रह्मा मुख से सत्य ज्ञान देते हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी ज्ञान यज्ञ में आए। ये द्रव्य यज्ञ नहीं है, जौ घी तिल होमने की बात नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ का संगम युग है। यहां हरेक को अपनी बुराइयां स्वाहा कर दी। पवित्र योगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां परम पिता शिव बाबा के श्रीमत अनुसार और निमित्त आदि पिता ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी जगदम्बा के उदाहरण को देखते हुए हर कोई मन वचन कर्म से बुराइयों को स्वाहा कर रहा। यही संदेश परमात्मा का आप सबके लिए है। ये महापरिवर्तन का समय है। परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। युगे युगे आते तो कलयुग क्यों आया? द्वापर के अंत में आकर क्या किया भगवान ने फिर? तो परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। हर कलयुग के अंत समय, हर 5000 वर्ष के अंत परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। साधारण मानव तन